कमरे में शाम का ठहराव और गहरा हो चला था। लिविंग रूम की खिड़कियों से आती रोशनी अब सुनहरी नहीं रही थी, वो धीरे धीरे मटमैली होती जा रही थी, जैसे दिन खुद को समेटकर पीछे हट रहा हो। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी और उसी लय में कमरे की चुप्पी सांस ले रही थी। विश्वनाथ सोफे पर बैठा था, लैपटॉप उसकी गोद में खुला था। स्क्रीन पर कुछ फाइलें, कुछ ईमेल, काम की दुनिया, जो देखने में पूरी तरह मौजूद लग रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं, लेकिन रफ्तार में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे हर शब्द सोच समझकर टाइप किया जा रहा हो, या जैसे ध्यान कहीं और अटका हो। असल में ध्यान कहीं और ही था। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। शामली अंदर आई। उसने बहुत धीरे कदम रखा, जैसे आवाज भी पूछकर चल रही हो। एक पल को वो वहीं रुक गई, दरवाजे के पास। सामने विश्वनाथ था, सोफे पर बैठा, झुके हुए, लैपटॉप में डूबे हुए, या कम से कम ऐसा लग रहा था। शामली का मन जैसे एक साथ कई दिशाओं में खिंच गया। मुझे उनसे बात करनी है। ये ख्याल अचानक नहीं आया था, ये तो तब से था, जब से उसने विश्वनाथ को सफेद शर्ट में देखा था, जब से उसकी नजरें ठिटकी थीं, जब से दिल ने बिना पूछे एक कदम आगे बढ़ा था। लेकिन अब क्या बात करूं? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। आज क्यों लग रहा है कि कुछ कहना जरूरी है? वो दो कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गई। विश्वनाथ ने नजर नहीं उठाई, उंगलियां कीबोर्ड पर चलती रहीं। शामली को लगा वो बहुत बिजी है, इतने कि शायद उसे देख भी नहीं रहा था। लेकिन ये सिर्फ उसका भ्रम था। असल में विश्वनाथ हर आहट सुन रहा था, उसके कदमों की, उसके रुकने की, उसके सांस लेने की। लैपटॉप पर खुली फाइल वही की वही थी, पिछले 5 मिनट से। एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ी थी। वो आई है, ये सोचते ही उनके कंधे हल्के से तन गए। अगर वो कुछ कहे तो मैं क्या कहूंगा? इसलिए उसने उंगलियों की गति थोड़ी तेज कर दी, बिजी होने का नाटक, खुद को और उसे दोनों को यकीन दिलाने के लिए। शामली ने गला साफ किया, बहुत हल्के से। वो आवाज निकली और वहीं अटक गई। विश्वनाथ की उंगलियां एक पल को रुकीं, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया। बस इतना कहा, नजर अब भी स्क्रीन पर। शामली का दिल जरा तेज धड़का। अब बोल, कुछ भी बोल। आप, उसने फिर कोशिश की, फिर चुप। कमरे में चुप्पी और गाढ़ी हो गई। शामली के हाथ अनजाने में एक दूसरे में उलझ गए, उंगलियां मसलती रहीं, साड़ी का किनारा, फिर अपनी ही हथेरी। क्या कहूं? ये तो नहीं कह सकती कि आज आप, नहीं ये भी नहीं। विश्वनाथ इंतजार कर रहा था, वो जानता था वो कुछ कहना चाहती है। उसका रुकना, उसकी हिचक, उसकी सांसों की बदली लय, सब महसूस हो रहा था। लेकिन वो भी कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर वो बोलता तो शायद वो सब बाहर आ जाता जो वो अब तक सहेज कर बैठा था। कुछ पल बीते, फिर शामली ने अचानक कहा, मैं बाथरूम जा रही हूं। आवाज में राहत भी थी और थोड़ी सी हार भी। विश्वनाथ ने सिर हिलाया, अब भी बिना देखे, हाँ बस यही। शामली तेज कदमों से अंदर वाले कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बंद हुआ, बाथरूम की लाइट जली। आईने के सामने खड़ी शामली ने खुद को देखा, वही चेहरा, लेकिन आज आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने दोनों हाथ वॉश बेसन पर टिकाए और आईने में खुद से बात करने लगी, धीरे, लगभग फुसफुसाकर। शामली, तू इतना डरती क्यों है? आईने में उसकी अपनी आंखें उसे देख रही थीं। वो उतने सख्त नहीं है जितने लगते हैं, उसने खुद से कहा। तू जानती है ये? एक पल रुकी, फिर होंठ भींच कर बोली, तो फिर आज आज दिल इतना घबराया हुआ क्यों है? उसने गहरी सांस ली, बात करनी है, लेकिन क्या बात करूं? आईने में उसका प्रतिबिंब भी जैसे कंधे उचका रहा हो। कोई शिकायत नहीं है, कोई सवाल नहीं है, फिर भी कुछ कहना है। वो हल्की सी हंसी, जो हंसी नहीं थी, उसके होंठों पर आई। कितनी अजीब बात है ना, जब कुछ कहना जरूरी लगे लेकिन शब्द ही ना मिले। उसने अपना पल्लू ठीक किया, बालों को पीछे किया। कोशिश कर शामली, उसने खुद को हिम्मत दी, एक दिन तो बोलना ही पड़ेगा। बाहर लिविंग रूम में विश्वनाथ अब लैपटॉप स्क्रीन को देख ही नहीं रहा था, उनकी नजर कहीं और थी, किसी अदृश्य बिंदु पर। वो बाथरूम में गई है, ये ख्याल अजीब सा सुकून भी दे रहा था और बेचैनी भी। उसने लैपटॉप बंद कर दिया। आवाज हल्की सी आई, जैसे काम का दिखावा भी अब थक गया हो। वो सोफे पर पीछे टिक गया, आंखें बंद की। अगर वो बात करती तो शायद मैं भी, लेकिन वाक्य पूरा नहीं हुआ, कुछ बातें अभी भी अधूरी थीं। बाथरूम में शामली ने नल खोला, हाथों पर पानी लिया, चेहरे पर छिड़का, आईने में फिर देखा। ठीक है, उसने खुद से कहा, अभी नहीं तो कभी और। लाइट बंद की, दरवाजा खोला। कमरे के बाहर वही ठहराव उसका इंतजार कर रहा था। और यहीं ये दृश्य बिना किसी बात के, बिना किसी जवाब के, बस दो मनों की उलझन के साथ खामोशी में थम गया। बाथरूम से निकलकर शामली जब वापस कमरे में आई तो चेहरे पर ताजगी थी, लेकिन मन में वही हल्की सी घबराहट अब भी बनी हुई थी। उसने सोचा था अब वो कुछ कहेगी, बस दो शब्द ही सही। वो जैसे ही आगे बढ़ी उसकी नजर विश्वनाथ पर पड़ी। विश्वनाथ खिड़की के पास खड़ा था, मोबाइल कान से लगाए। आवाज धीमी थी लेकिन हंसी साफ सुनाई दे रही थी। अरे हाँ यार, सालगिरह है तो पार्टी तो बनती है, वो बोले। कल? ठीक है, देखता हूँ। हाँ, बुलावा भेज देना। शामली वहीं रुक गई। उसका कदम आगे बढ़ते बढ़ते थम गया। किसी दोस्त की कॉल है, उसने मन ही मन कहा। अब नहीं। विश्वनाथ की आवाज में हल्की सहजता थी। वो दोस्त शायद काफी करीबी था। शामली को अचानक लगा जैसे उसके आने का वक्त ही गलत हो गया हो। उसने बिना कोई आवाज किए कमरे के अंदर की तरफ रुख किया, धीरे से बिस्तर के पास गई, पल्लू ठीक किया और बैठ गई। दिल में एक अनजानी सी कसक थी, बात करने की चाह अधूरी रह गई थी। कुछ पल बाद वो लेट गई, पीठ दूसरी ओर कर ली, आंखें बंद की, पर नींद तुरंत नहीं आई। फोन पर बात करते हुए विश्वनाथ की आवाज कुछ देर और आती रही, फिर कॉल खत्म हो गई। कमरे में फिर सन्नाटा लौट आया। विश्वनाथ ने मोबाइल हाथ में ही पकड़े पकड़े बिस्तर की ओर देखा। शामली सो चुकी थी, या शायद सोने की कोशिश कर रही थी। वो एक पल वहीं खड़ा रहा, मन में वही बात अटकी हुई, मुझे भी तो उससे बात करनी थी। उसने गहरी सांस ली, धीरे से लाइट बंद की, फिर बिस्तर के दूसरे सिरे पर जाकर लेट गए, बीच में थोड़ा सा फासला छोड़कर। पीठ छत की ओर थी, आंखें खुली। दोनों एक ही कमरे में थे, एक ही बिस्तर पर, लेकिन दोनों की बातें नींद से पहले ही कहीं अधूरी रह गई थी। कमरा शांत था और उसी शांति में ये दृश्य धीरे धीरे थम गया।